युग निर्माण की शिक्षण प्रक्रिया -1।
आज के व्यक्ति और समाज के सामने अगणित समस्याएं, उलझने और जिज्ञासाएं उपस्थित हैं।
पिछले अज्ञानांधकार युग की विकृत परिपाटियां आज की यथार्थवादिता की अपेक्षा कराने वाले बुद्धिवादी युग में निरर्थक और अवांछनीय सिद्ध हो रही हैं। वस्तुस्थिति को समझने और उसका सही समाधान ढूंढने के लिए मनुष्य व्याकुल एवं आतुर हो रहा है। इन परिस्थितियों में ज्वलंत प्रश्नों का उचित समाधान प्रस्तुत करने वाले प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता थी। युग निर्माण योजना के अंतर्गत इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक परिष्कृत विचारधारा प्रस्तुत की है और उसका प्रकाश सर्वसाधारण तक पहुंचाने का निश्चय किया है।
इस विचार पद्धति को पुरुषों को रात्रि पाठशालाओं और महिलाओं के लिए अपराहन शालाओं के रूप में लोक शिक्षण के लिए प्रस्तुत किया है। 100 पाठ इसके लिए प्रस्तुत किए गए हैं और उनको 6 मास में सिखाने का कार्यक्रम बनाया है।
प्रस्तुत पुस्तक उन अध्यापकों के लिए लिखी गई है जो उपरोक्त पाठशालाएं चलाएंगे।
100 पाठों में से प्रतिदिन एक पाठ पढ़ाया जाएगा।
अध्यापक या कोई छात्र इस पाठ को पढ़कर सुनाएंगे। छात्र उसे मनोयोग पूर्वक सुनेंगे एवं पढ़ेंगे।
अध्यापकों को यह देखना है कि पढ़ाए पाठ को छात्र ठीक तरह हृदयंगम कर सके या नहीं। इसके लिए हर पाठ के साथ 10 प्रश्न जोड़े गए हैं। उन्हें छात्रों से पूछने पर पता चल जाता है कि शिक्षण का किस छात्र ने कितना हृदयंगम किया। जो पूरी बात न समझ सके हों उन्हें बार बार पूछने और बताने का क्रम तब तक चलाना चाहिए जब तक कि छात्र वस्तुस्थिति को ठीक तरह समझ न लें। इसके अतिरिक्त हर पाठ को और भी अच्छी तरह समझाने के लिए उसके साथ जुड़ी हुई कथा, कहानियों, घटनाओं को मनोरंजक ढंग से समझाना चाहिए। इस प्रकार की कथाएं हर पाठ के साथ इसी प्रयोजन के लिए जोड़ी गई हैं।
यदि इन्हें अध्यापक अच्छे ढंग से कह सकें और छात्र मनोयोग पूर्वक सुन समझ सके तो निश्चय ही पाठ को ठीक तरह समझाया जा सकेगा। 1-6 माह में इन 100 पाठों को पढ़ाकर उनकी परीक्षा व्यवस्था, प्रमाण पत्र देने का दीक्षांत संस्कार किस प्रकार किया जाए इसका विवरण पूर्व पुस्तकों के भूमिका भाग में बताया जा चुका है। नव निर्माण की विचारधाराओं के जनमानस में प्रतिष्ठापित करने से ही भावनात्मक नव निर्माण का लक्ष्य पूरा होगा। विचार क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति के लिए यह शिक्षा पद्धति कितनी अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली सिद्ध होगी यह समय ही बताएगा। संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सकने में प्रस्तुत विचार पद्धति अनुपम भूमिका प्रस्तुत कर सकने में समर्थ होगी। विश्व मानव के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में योगदान देने के इच्छुक प्रबुद्ध व्यक्तियों को ऐसी रात्रि पाठशालाएं और अपराहन शालाएं सर्वत्र स्थापित करनी चाहिए जिनमें यह नव निर्माण की शिक्षा पद्धति सिखाई पढ़ाई जाती रहे। संसार की यह एक अनुपम सेवा साधना होगी। श्रीराम शर्मा आचार्य। एस्टरिस्क युग निर्माण योजना के ये आदर्श एवं सिद्धांत निम्न प्रकार हैं।
इन्हें ही प्रशिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। इनकी संख्या 100 है।
1. आस्तिकता एवं उपासना का प्रयोजन प्रतिफल। 2. देववाद और पूजा अर्चा का महत्व। 3.
जीवन लक्ष्य समझें और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें।
4. स्वर्ग और मुक्ति का आनंद इसी जीवन में संभव। 5. कर्मफल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। 6. दुष्कर्मों के दंड से प्रायश्चित ही छुड़ा सकेगा। 7. हम कामना ग्रस्त न हों, प्रगतिशील बने। 8. भाग्यवाद हमें नपुंसक और निर्जीव बनाता है। 9. बौद्धिक परावलंबन का जुआ उतार फेंकें। 10. ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग की महान साधना। 11. आध्यात्मिक जीवन के 5 कदम। 12.
हर दिन को एक नया जन्म समझें और उसका सदुपयोग करें।
13. स्वाध्याय दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। 14.
अपना महान महत्व समझें और अपने को सुधारें।
15. कर्तव्य परायणता मानव जीवन की आधारशिला। 16. असत्य व्यवहार सद्भावना और सामाजिकता पर कुठाराघात। 17. बेईमानी का नहीं ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। 18. हंसती और हंसाती जिंदगी ही सार्थक है। 19.
अपना ही नहीं कुछ समाज का भी हित साधन करें।
20. सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त। 21.
साहस जुटाएं औचित्य अपनाएं।
22. आलस्य त्यागे सुसंपन्न बने। 23. समय का सदुपयोग सफलता के लिए अमोघ वरदान। 24. अवरोध हमें अधीर न बनाने पाएं। 25.
आवेशग्रस्त न हो शांति और विवेक से काम लें।
26.
विचार शक्ति का महत्व समझें और सदुपयोग करें।
27. आरोग्य रक्षा के लिए संतुलन आवश्यक है। 28. स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रकृति का अनुसरण आवश्यक। 29.
आहार और विहार में असंयम न बरतें।
30.
संयम बरतें सुखी रहें।
31. हम अस्वच्छ न रहें घृणित न बने। 32.
ढलती आयु का सदुपयोग इस तरह करें।
33. अनीति से सतर्क रहें, अन्याय को रोकें. 34.
जो अनुचित है उससे सहमत न हो.
35. औचित्य की प्रशंसा और अनौचित्य की भर्त्सना की जाए. 36. सुव्यवस्था ही परिवारों को सुविकसित रख सकेगी. 37. दाम्पत्य जीवन एक आध्यात्मिक योग साधना. 38. पतिव्रत ही नहीं, पत्नीव्रत भी निभाया जाए. 39. संयुक्त परिवार प्रणाली एक श्रेयस्कर परंपरा. 40.
संतान कितनी और क्यों पैदा करें.
41. सुसंस्कृत संतान के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक. 42.
बालकों को जन्म ही न दें, उनका निर्माण भी करें.
43. संतान को स्वावलंबी भर बनाना ही पर्याप्त है. 44. पर्दा प्रथा नारी के साथ बरती जाने वाली एक नरेशन संहिति. 45.
अपव्यय एक पाई का भी न करें.
46. धन का उपार्जन ही नहीं, सदुपयोग भी ध्यान में रहे. 47. अपव्यय और फैशन परस्ती एक ओछापन. 48. जेवरों का भौंना फैशन हर दृष्टि से हानिकारक. 49. मांस मनुष्यता को त्याग कर ही खाया जा सकता है. 50. तंबाकू का दुर्व्यसन छोड़ा ही जाना चाहिए. 51.
देशभक्त नव निर्माण के कार्य में जुट जाएं.
52. नागरिक कर्तव्य पालें और समाज में स्वस्थ परंपरा डालें. 53. व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है. 54. प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाना युग की अपेक्षणीय मांग. 55. व्यायाम एवं स्वास्थ्य शिक्षा समाज की एक महती आवश्यकता. 56. अध्यापक अपने महान पद, गौरव और उत्तरदायित्व को निभाएं. 57. छात्र अपने भविष्य का निर्माण आप करें. 58.
नवयुवक सज्जनता और शालीनता सीखें.
59. उदार सहकारिता से हमारी उलझने सुलझेंगी. 60.
प्रगति के लिए श्रम, सम्मान एवं रह उद्योगों की आवश्यकता.
61.
अन्न संकट की चुनौती का सामना कैसे करें.
62. शाक हमारी खाद्य समस्या का हल करेंगे. 63. वृक्षारोपण और संवर्धन एक अति आवश्यक कार्य. 64.
तुलसी हमारे हर घर में शोभायमान रहे.
65. गौ संरक्षण हमारी एक महती आवश्यकता. 66. अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान माना जाए. 67.
वोटरों की सतर्कता पर प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर है.
68. प्रबुद्ध नारी महिला जागरण की कमान संभालें. 69. नारी उत्कर्ष के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए जाएं. 70. ऊंच नीच की मान्यता अन्यायमूलक है. 71.
अश्लीलता की बाढ़ हमें पतित बना रही है.
72. भिक्षावृत्ति को व्यवसाय न रहने दें. 73. मृतक भोज भी अविवेकपूर्ण न हो. 74. भूत पलीत और उद्भिज देवी देवताओं का जंजाल. 75. पशुबलि भारतीय धर्म पर एक कलंक. 76.
प्राणियों के प्रति निर्मम और निष्ठुर न बने.
77. विवाहों के आदर्श ऊंचे रखे जाएं. 78. बाल विवाह एक अति घातक कुप्रथा. 79. खर्चीली शादियां हमें बेईमान और दरिद्र बनाती हैं. 80. बेटे वाले व्यर्थ ही घाटा और बदनामी न उठाएं. 81. उच्च शिक्षित कन्या की विवाह समस्या और उसके नए हल. 82. विधुर और विधवाएं समान न्याय के अधिकारी. 83. मनस्वी शूरवीर विवाहोन्माद के असुर से जूझें. 84. बिना खर्च के विवाहों का प्रचंड आंदोलन चल पड़े. 85. आत्ताई उद्दंता का डटकर मुकाबला किया जाए. 86. धर्मतंत्र को प्रगतिशील बनने दिया जाए. 87. साधु ब्राह्मण समाज अपना कर्तव्य और दायित्व समझें. 88.
मंदिर आस्तिकता और सत्प्रवृत्तियां जगाने में लगें.
89. त्योहार और संस्कार प्रेरणाप्रद पद्धति से मनाए जाएं. 90.
जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाए जाएं.
91. गायत्री और यज्ञ भारतीय धर्म संस्कृति के माता पिता. 92. गायत्री यज्ञ आंदोलन एक महान रचनात्मक अभियान. 93. शिखा भारतीय संस्कृति की धर्मध्वजा. 94. यज्ञोपवीत धारण नीति और कर्तव्य अपनाने का व्रतबिंद. 95. ज्ञान यज्ञ का प्रकाश घर घर पहुंचाया जाए. 96. ज्ञान यज्ञ नवनिर्माण का महानतम अभियान. 97. व्यक्ति और समाज का समग्र निर्माण कर सकने वाली शिक्षा पद्धति. 98.
कला लोकन जन ही नहीं, भावनाओं का परिष्कार भी करे.
99. रचनात्मक कार्यक्रमों से ही देश समर्थ बनेगा. 100. अनीति असुरता के विरुद्ध प्रबल संघर्ष किया जाएगा. 1. आस्तिकता एवं उपासना का प्रयोजन प्रतिफल. प्रश्न 1.
ऋषि मुनियों द्वारा धर्म की रचना क्यों की गई.
2.
धर्म का प्रथम आधार क्या है,
उसकी पृष्ठभूमि बताएं. 3.
ईश्वर के सामने हमारी चतुरता क्यों नहीं चल सकती.
4.
आस्तिकता को ही धर्म का प्रथम आधार क्यों माना गया है?
5.
आज के युग में आस्तिकता किस तरह विकृत हो गई है?
6.
भगवान की उपासना व्यक्ति किस कारण करते हैं?
7.
आस्तिकता के आस्था को परिपक्व करने के लिए किन किन बातों का आश्रय लिया जाता है?
8.
उपासना का क्या अर्थ होता है तथा उस समय हमें मन में क्या अनुभव करना चाहिए?
9.
उपासना करते समय हम भगवान से क्या मांगा करें?
10. सर्वत्र श्री समृद्धि प्रगति एवं शांति की परिस्थितियां उत्पन्न करते रहने के लिए हमें क्या करते रहना चाहिए? कथाएं.
1. संसार बुराई में जल रहा है और आप राम नाम का उपदेश दे रहे हैं, एक नास्तिक ने गांधी से कहा. गांधी जी ने उत्तर दिया, सोचो जब थोड़ी आस्तिकता शेष है तब तो लोगों का यह हाल है.
जब आस्तिकता बिल्कुल न रहेगी तब क्या होगा? 2. एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, कहता था कि यह सारा संसार संयोग मात्र है, प्रकृति अपने आप सब कुछ रचती है. एक दिन उसका लड़का सुंदर चित्र बनाकर लाया और उसे दिखाते हुए बोला, पिताजी यह तस्वीर कैसी है? नास्तिक बोला, बहुत अच्छी, मगर यह शक्ल खींची किसने?
लड़का बोला, मेरे स्कूल में स्याही कागज रंगीन पेंसिलें सब कुछ रखा है, आप तो जानते हैं प्रकृति में हलचल होती, सब चीजें उठी चली और झट तस्वीर बन गई. यह सुनकर वह नास्तिक बोल पड़ा, यह भी कभी हो सकता है? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, यदि यह तस्वीर बिना बनाए नहीं बन सकती तो इतना बड़ा संसार बिना कर्ता के कैसे बन सकता है?
3. अपने साथी को मेंट पर खड़ा लड़का चिल्लाया, भागो, खेत का मालिक खड़ा है. दोनों भागे, दूर जाकर रुके. तब पहले लड़के ने पूछा, कहाँ था खेत का मालिक?
दूसरे लड़के ने कहा, भाई भगवान सारे संसार का मालिक है, वह तो हर जगह है, उस खेत में हम लोगों को चोरी करते क्या वह न देख रहा होगा?
4. एक व्यक्ति एक दिन एक साधु के पास जाकर बोला, भगवान मुझे भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती? साधु ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बोला, बेटा यह 5-7 पत्थर लेकर मेरे साथ ऊपर पहाड़ों पर आओ, वहीं तुम्हारी बात का उत्तर देंगे. वह आदमी सिर पर पत्थर रखकर साधु के साथ चल पड़ा, पर थोड़ी ही दूर चढ़कर हांफने लगा. साधु ने एक पत्थर फेंक दिया,
वजन कुछ हल्का हो जाने से वह थोड़ा और चढ़ गया, पर फिर थकान के मारे उसका चढ़ना मुश्किल हो गया.
एक पत्थर और निकाल देने से वह कुछ और चढ़ सकने योग्य हो गया.
इसी तरह करते करते ऊपर तक पहुंचने में सारे पत्थर फेंकने पड़े. ऊपर जाकर साधु बोला, बेटा जिस तरह पत्थरों के भार के कारण तुम ऊपर नहीं चढ़ सके, उसी तरह काम क्रोध लोभ मोह आदि सांसारिक आकर्षणों के रहते कोई ईश्वर अनुभूति नहीं कर सकता.
5. संत एकनाथ दो घड़ों में गंगाजल लिए रामेश्वरम जा रहे थे. मार्ग में बीमारी और प्यास से तड़पता एक गधा पड़ा. उनने एकनाथ की ओर देखकर कहा, महाराज प्यास के मारे मर रहा हूँ, पानी पिला दो. एकनाथ ने एक एक कर दोनों घड़े गंगाजल पीड़ा से छटपटाते गधे को पिला दिए. गंगाजी पीकर गधा बोला, एकनाथ आओ हम तुम गले मिलें. एकनाथ बोले, गधे दयावश मुझे गंगाजल पिला दिया, इसका यह अर्थ नहीं कि तेरे शरीर से अपने शरीर का स्पर्श भी करूं. गधा हंसा और बोला, एकनाथ मैं गधा नहीं रामेश्वरम हूँ,
यहाँ पड़ा पड़ा लोगों की परीक्षा कर रहा था कि लोग मेरे पत्थर के शरीर पर ही पानी चढ़ाते हैं या प्राणी मात्र की चेतना में समाये मुझ चेतना आत्मा के प्रति भी आस्था रखते हैं.
वाल्मीकि डाकू थे, प्रतिदिन 5 व्यक्तियों का वध कर लूटना उनके लिए आवश्यक था. एक दिन महर्षि नारद वहां आए, उन्होंने कहा, तुम्हारी पाप की कमाई सभी खाते हैं, पर वे पाप के भागीदार भी होंगे या नहीं?
वाल्मीकि पूछने गए तो परिवार वालों ने मना कर दिया, इससे उन्हें संसार की असारता का पता चल गया.
वे संत हो गए और रामायण जैसे आस्तिकता के प्रताप ग्रंथ के प्रणेता बने.
7. एक बार कबीर से किसी ने पूछा, आप स्कूल तक नहीं गए, कलम तक नहीं छुई, फिर इस असाधारण बौद्धिक प्रतिभा का कारण क्या है?
कबीर बोले, आस्तिकता ईश्वर में विश्वास का, मनुष्य में आत्मिक क्षमता के साथ बौद्धिक प्रतिभा का भी विकास अनिवार्य है. 2. देववाद और पूजा अर्चा का महत्व. प्रश्न 1. विभिन्न देवता क्या हैं?
उनकी अलंकारिक कल्पना क्यों की गई?
2. एक सद विप्रह बहुधा वदंती से क्या समझते हो? 4. शंकर जी की गंगा चंद्रमा विष सर्प मुंडमाला सिंह चर्म वृषभ का मर्म समझाइए. 5. दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? 6. पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्प क्या शिक्षा देते हैं? 7. चंदन एवं प्रसाद का क्या महत्व है? 8. सिद्ध कीजिए कि पूजा उपासना का प्रयोजन भावनात्मक परिष्कार है. 9.
किस आधार पर मनुष्य देव शक्तियों के अनुकूल बनता है और कैसे?
कथाएं.
एक बंदर और सियार में दोस्ती थी. एक दिन वे दोनों जा रहे थे, तब रास्ते में एक कब्रिस्तान मिला. बंदर एक कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया और आंख मूंदकर कुछ स्तुति सी करने लगा.
उसका ख्याल था इससे सियार प्रभावित होकर उसकी विद्वता का लोहा मानेगा,
पर सियार ने समझा इसे बीमारी हो गई है. सो उसने पूछा, क्यों भाई क्या पेट में दर्द हो गया है?
बंदर झुंझला कर बोला, नहीं यार, यह मेरे पूर्वजों की समाधि है। मैं उनके ज्ञान बल पौरुष की महानता का गुणानुवाद गा रहा था ताकि मैं भी वैसा ही बनूं।
सियार बोला, महोदय, गुण गाने से ही नहीं, आचरण में लाने से ही तुम महान बन सकते हो।
यहूदियों का प्रायश्चित पर्व आया। किसी ने एक अनपढ़ युवक को झुठला दिया कि उस दिन खूब शराब पीनी चाहिए।
युवक ने ऐसा ही किया, शराब पीकर नशे में धुत हो गया। जब नशा उतरा तो देखा दूसरे लोग पूजा जप ध्यान कर रहे हैं।
युवक बड़ा दुखी हुआ, उसे मंत्र भी याद नहीं था, सो वह वर्णमाला के अक्षर ही दोहराने लगा और मन ही मन अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए भगवान से कहने लगा, प्रभु, इन अक्षरों को जोड़कर तुम ही कोई अच्छा सा मंत्र बना लेना। धर्मगुरु रवि उस युवक के पास पहुंचे तो युवक ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी।
रवि ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, तात,
उपासना तो तुम्हारी ही फलित हुई। सभी इंद्रियां झगड़ रही थी और अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही थी, तब आत्मा बोली, तुम सब मेरे ही शरीर के अंग हो, लड़ने की अपेक्षा परस्पर हित की बात सोचो तो मंगल होगा।
शरीर की यह कहानी सुनकर गुरु ने कहा, सभी देवता परमात्मा की ही शक्तियां हैं, उनके छोटे बड़े के झगड़े में न पड़कर जो उनके आदर्श अपने जीवन में धारण करते हैं उन्हीं का देवाराधन सार्थक होता है। मूर्ति को अहंकार हो गया, लोग कितनी दूर से आकर मुझे शीश झुकाते हैं। अभी वह अहंकार में फूल ही रही थी कि आकाश बोला, बावरी मनुष्य तुझे शीश नहीं झुकाते, इन्हें तो अपनी श्रद्धा को दूर जाकर प्रणाम करने की आदत है।
सोमनाथ लुटा तब भी शंकर भगवान कुछ न कर सके, फिर भी आप मूर्ति पूजा को महत्व देते हैं। एक आदमी ने मदन मोहन मालवीय से प्रश्न किया, मालवीय जी बोले, क माने कबूतर और ख माने खरगोश भी तो नहीं होता, फिर भी छोटे बच्चों को यही क्यों पढ़ाया जाता है? यह तो प्रारंभिक शिक्षण की विधि है, अल्पबुद्धि बच्चे इसी से शिक्षा की ओर आकर्षित होते हैं, उस व्यक्ति ने बताया। मालवीय जी बोले, उपासना और ध्यान की उच्च स्तरीय साधना के लिए इसी प्रकार मूर्ति पूजा भी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है। हिंदुओं के देवता विचित्र क्यों होते हैं? एक अंग्रेज पादरी लोकमान्य तिलक से पूछ बैठे। तिलक बोले, क्योंकि हर देवता एक शक्ति होता है, शक्ति के रहस्यों को अलंकारिक रूप से न प्रस्तुत किया जाता तो लोगों को उनकी उपयोगिता नहीं भयंकरता ही याद रहती।
तीन, जीवन का लक्ष्य समझें और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें।
प्रश्न,
एक मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ क्यों है? उसे अधिक सुविधाएं क्यों दी गई हैं?
टू, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है?
तीन, आत्मबोध किसे कहते हैं? चार, यह कब समझा जाना चाहिए कि ईश्वर का प्रकाश चमकने लगा है?
फाइव, समर्पित जीवन से क्या समझते हो?
छह, ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं? वह किन्हें होता है? सात, अधिकांश लोग किस प्रकार के कर्मकांडों से आत्मसंतोष किए बैठे, क्या उनसे कुछ लाभ है? आठ, पूजा उपासना का सच्चा मतलब क्या है?
नाइन, ईश्वर की प्रसन्नता के कौन कौन केंद्र बिंदु हैं? टेन, भगवान की इच्छा पूर्ति का साहस कैसे किया जाता है? वन, एक मनुष्य को पढ़ लिख कर अपनी शिक्षा का घमंड हो गया,
वह घर वालों पर रौब जमाया करता, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ।
नन्ही सी बालिका एक नन्हा सा कीड़ा लेकर आई, बोली, पिताजी, इसका क्या नाम है?
उन सज्जन को उस मकोड़े के नाम का ही नहीं पता था,
उसे अपनी शिक्षा के अहंकार पर बड़ी ग्लानि हुई। टू, एक डॉक्टर धर्म कर्म को नहीं मानता था, पर स्त्री बड़ी साधनाशील और धर्मपरायण थी।
डॉक्टर कहता, मैं हजारों लोगों को बचा लेता हूँ, भगवान क्यों आकर नहीं बचा लेता? स्त्री तब तो कुछ न बोली, पर कुछ दिन पीछे जब डॉक्टर के बाल सफेद हुए, दांत टूटे, नए दांत, नई मूंछें कब तक निकलेंगी?
डॉक्टर साहब कुछ उत्तर न दे सके, जो ज्ञान जीवन का अर्थ न समझा सके निरर्थक है।
तीन, वासना के उपक्रम में पढ़कर महाराज ययाति असमय ही वृद्ध हो गए, उनकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, पर मन में वासना का भूत नहीं उतरा, अतएव वे अपने पुत्रों से यौवन की याचना करने लगे। तीन, पुत्रों ने तो इनकार कर दिया, पर चौथे पुत्र ने कहा, पिताजी, मनुष्य संसार में इंद्रिय सुख व भोगों के लिए नहीं, आत्मोत्थान के लिए आया है, आप मेरा यौवन लेकर अपनी जरा मुझे सहर्ष दे दें।
मैं थोड़े से सुख लेकर क्या करूंगा, मुझे जीवन लक्ष्य अभीष्ट है, सो उसके लिए वृद्ध शरीर से भी काम चल जाएगा। पुत्र की इस अनासक्ति ने केवल अन्य भाइयों की ही नहीं वरन याति की भी आंखें खोल दी।
चार, मनुष्य बन गया तो उसे विदा करते हुए विधाता ने कहा, तात, जाओ और संसार के प्राणियों का हित करते हुए स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग करो, पर ऐसा कुछ न करना जिससे तुम्हें मृत्यु के समय पछतावा हो।
आदमी ने विनय की, भगवान, आप एक कृपा और करना, मुझे मरने से पहले चेतावनी अवश्य दे देना, ताकि यदि मैं मार्ग भ्रष्ट हो रहा हूँ तो संभल जाऊँ। तथास्तु कहकर विधि ने मनुष्य को धरती पर भेज दिया,
पर यहाँ आकर मनुष्य इंद्रिय भोगों में पड़कर अपने लक्ष्य को भूल गया।
जैसे तैसे आयु समाप्त हुई, कर्मों के अनुसार यमदूत उसे नरक ले जाने लगे, तो उसने विधाता से शिकायत की, आपने मुझे मृत्यु के पूर्व चेतावनी क्यों नहीं दी?
विधाता हंसे और बोले, एक, तेरे हाथ कांपे, दो, दांत टूट गए, तीन, आंखों से कम दिखने लगा, चार, बाल पक गए, चार, संकेत देने पर भी तू न संभला तो इसमें मेरा क्या दोष?
5 तो पड़ोसी, एक ईमानदार और ईश्वर भक्त, दूसरा छल कपट से धन कमाता और सांसारिक सुख भोगता। पहला आदमी यह देखकर दिन भर ईर्ष्या से कुड़ता रहता। एक दिन वह भगवान से जाकर बोला, प्रभु आपसे जो कुछ मांगा, धन संपत्ति स्त्री पुत्र सब कुछ मिला, फिर भी सुखी नहीं हो पाया, सो क्यों?
भगवान हंसे और बोले, इसलिए कि तू भी वही चाहता है जो कोई भी सांसारिक सुखों में आसक्त चाहता है।
अब तू आत्मा सुख आत्मा शांति की कामना कर, उसी से सुख मिलेगा, धन संपत्ति से नहीं।
6 मीठे फल खाने की इच्छा से दो मित्र एक बगीचे में गए।
माली ने कहा, इस बगीचे के मालिक की आज्ञानुसार यहाँ एक ही दिन ठहर सकते हो, सो शाम तक जितने खा सको फल खा लो। दोनों अपनी रुचि के आम खाने चल दिए।
एक तो उछल कर पेड़ों पर चढ़ा और पेट भर फल खा लिए, दूसरा देखता रहा पौधों के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, थाले कैसे बनाए जाते हैं, पानी कैसे लगाया जाता है। शाम तक उसने एक नया बाग लगाने की सारी बातें जान ली, अलबत्ता फल नहीं खा पाया, पर घर जाकर उसने दूसरा बाग लगा लिया। इतनी कथा कहने के बाद दरवेश ने अपने शागिर्दों से कहा, यह संसार भी ऐसा ही है, मनुष्य एक निश्चित अवधि के लिए आता है, जो सांसारिक आकर्षणों में पड़े हैं वे तो पहले युवक की भांति है, समझदार वो हैं जो दूसरे की तरह परिस्थितियों का अध्ययन कर जीवन का सच लक्ष्य प्राप्त करते हैं।
7 पत्थर गुस्से से बोला, फूल जानता नहीं, तुझे अभी पीस कर रख दूंगा।
फूल मुस्कुराया और बोला, तब तो आप बड़े उपकारी हैं, मुझे कुचल कर आप मेरी सुगंध और भी दूर दूर तक फैलाने में ही सहायक होंगे। पत्थर अपनी अकड़ पर बड़ा लज्जित हुआ और अनुभव किया कि फूल का जीवन ही सच्चा और सार्थक है।
ईट बूंद सागर में घुलने लगी तो उसे अपना अस्तित्व समाप्त होने का बड़ा दुख हुआ। सागर ने समझाया, बेटी तुम्हारी जैसी असंख्य बूंदों का ही तो मैं सम्मिलित रूप हूँ, यहाँ तो तुम लघुतम में विराटतम की अनुभूति करोगी।
बूंद को यह सब अच्छा नहीं लगा। बूंद फिर जमीन में नदी में होती हुई सागर पहुंची तो बड़ी पछताए और समझ गई कि अपने उद्गम में लीन होना ही सच्ची शांति सच्चा जीवन लक्ष्य है।
4 स्वर्ग और मुक्ति का आनंद इसी जीवन में संभव है। प्रश्न 1 स्वर्ग क्या है, उसका वास्तविक अर्थ बताओ। 2 मुक्ति क्या है,
वह कितने प्रकार की होती है।
3 क्या स्वर्ग एवं नरक की मान्यताएं सही है।
4 सूक्ष्म व स्थूल शरीर में क्या भेद है।
5 क्या मुक्ति आत्मा नाश का ही दूसरा नाम नहीं है। 6 चिरस्थायी आनंद किसे कहते हैं,
वह कैसे मिलता है। 7 आत्मा का अवतरण धरती पर किस कारण हुआ है। 8 आत्मा शांति एवं संतोष किन्हें मिलता है। 9 नरक क्या है, क्या वह इसी लोक में नहीं है।
10 भवबंधन की मान्यता कहाँ तक सही है। 11 जन्म मरण क्या है। 12 सबसे बड़ी दुर्बलता कौन सी है। कथाएं 1 साधु कह रहे थे, यह संसार मिथ्या है, स्त्री पुत्री छोड़कर आत्म कल्याण की बात सोचनी चाहिए। एक बालक ने पूछा, महात्मन मैं कौन हूँ। साधु बोले, आत्मा। अच्छा तो अब यह बताइए, लड़के ने पूछा, मेरी माँ मेरी सेवा सहायता करती है, मेरे हित की बात सोचती है, क्या वह आत्म कल्याण न हुआ। साधु को कोई उत्तर देते न बना।
उन्होंने समझा, संसार खराब नहीं, अपना दृष्टिकोण खराब होता है, उसे ठीक कर लिया जाए तो समाज में रहकर ही मुक्ति का आनंद लिया जा सकता है।
2 मनुष्यों के व्यवहार में क्रोध होकर देवताओं ने दुर्भिक्ष को भेजा। दुर्भिक्ष धरती में आकर एक स्थान पर छुपकर देखने लगा, यहाँ के लोग आखिर किस तरह खराब हैं। तभी वहाँ एक परिवार आकर रुका, खाने के लिए उन्होंने रोटियाँ निकाली, रोटी एक ही थी।
पत्नी ने रोटी पति को देते हुए कहा, आप खा लीजिए, मुझे तो भूख नहीं है।
पति ने पुत्री को देते हुए कहा, बेटी तू खा ले, मैंने तो पानी पीकर पेट भर लिया। तभी वहाँ एक अपंग दिखाई दिया, लड़की ने रोटी उसे देते हुए कहा, भाई तुम बहुत भूखे दिखाई देते हो, लो रोटी खा लो। दुर्भिक्ष यह देखकर चुपचाप लौटकर देवताओं के पास जाकर बोला, आप लोगों ने मुझे भूल से स्वर्ग भेज दिया था। देवता कहने जा रहे थे कि वही मृत्युलोक है, पर तभी विधाता बोल पड़े, सचमुच तात,
जहां लोग प्रेम पूर्वक रहे स्वर्ग वहीं रहता है। 3 एक संपन्न व्यक्ति बड़ा दहकी रहता था, पर उसे अपने डैक का कोई कारण समझ में न आ रहा था। एक रात एक संत ग्रामवासियों में बैठे बातचीत कर रहे थे।
पास ही दीपक जल रहा था, आकाश में चंद्रमा खिला हुआ था। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज दीपक के नीचे अंधेरा और चंद्रमा के कालिक क्यों हैं? संत ने हंसकर कहा, वत्स अंधेरा पक्ष तो दुनिया की हर वस्तु में है, क्या ही अच्छा होता यदि तुम दीपक और चंद्रमा में कालिमा और अंधकार न देखकर प्रकाश देखते। मनुष्य अपने दुख का कारण समझ गया, उस दिन से वह हर वस्तु का उजला पक्ष देखने लगा।
4 जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर आयोजित एक बाल सभा में एक छोटी सी बच्ची ने पूछा, आपका वजन सबसे ज्यादा कब था और सबसे कम कब था।
जवाहरलाल जी ने उत्तर दिया,
सबसे अधिक तब जब मैं जेल में था और कम तब जिस दिन मैं पैदा हुआ था।
लड़की ने आश्चर्य से पूछा, अरे जेल में तो वजन कम होना चाहिए।
पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उस समय मेरा वजन देश सेवा में कष्ट सहन करने की खुशी में बढ़ गया था।
5 संत नाम एक गाँव से जा रहा था।
एक स्त्री और पति में झगड़ा हो रहा था। उन्होंने झगड़े के कारण का पता लगाया तो मालूम हुआ पति देव काम नहीं करते वैराग्य की आड़ लेकर स्वर्ग के चक्कर में पड़े हैं।
संत अनाम बोले, जिसको इस जीवन में स्वर्ग न मिला वह पर लोक में क्या स्वर्ग प्राप्त होगा। 6 विधाता ने घोषणा कर दी, एक सप्ताह के लिए कर्मों का प्रतिबंध नहीं रहेगा, जो भी चाहे स्वर्ग आ सकता है। चित्रगुप्त छुट्टी पर चले गए हैं। अब क्या था, स्वर्ग के इच्छुक लाखों व्यक्ति स्वर्गलोक की ओर दौड़ पड़े।
एक व्यक्ति सिर पर लकड़ियां लिए घर जा रहा था, उसे ऐसी कोई आतुरता न देखकर विधाता विमान से नीचे उतरे और उससे पूछा, क्यों भाई तुमने स्वर्ग के समाचार नहीं सुने क्या? सुने हैं महाराज, वृद्ध ने कहा, पर मुझे तो अपने हंसते हुए बच्चों, प्यार देती हुई पत्नी, मिलकर काम करते भाइयों और परस्पर सहयोग और मैत्री का व्यवहार करने वाले पड़ोसियों में ही स्वर्ग दिखाई देता है।
इस स्वर्ग को छोड़कर कहां आकाश में मारा मारा फिरूं।
7 अंधे भिखारी के हाथ में किसी ने 5 का नोट रख दिया। भिखारी ने समझा किसी ने मजाक में कागज थमा दिया है, सो उसने नोट वहीं फेंक दिया।
पास ही खड़े अन्य व्यक्ति ने नोट वापस देते हुए कहा, श्रीमान यह कागज नहीं नोट है।
ज्ञान चक्षुओं के अभाव में अंधे भिखारी के समान ही लोग इस संसार में ब्रह्मपूर्ण स्थिति में पड़े रहते हैं, जबकि स्वर्ग सुख ज्ञान रूप में हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है।
8 एक अमीर तमाम संपत्ति इकट्ठा कर इस प्रयत्न में था कि वह सारी संपत्ति कब्र में गाड़ लेगा और स्वर्ग में आनंद से रहेगा। महापुरुष ईसा ने कहा, मूर्ख अपनी संपत्ति अपने साधन इसी दुनिया में दीन और दुखियों के लिए खर्च कर, देख तुझे यही स्वर्ग मिलता है या नहीं। 5 कर्मफल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। प्रश्न,
एक सज्जनता की परीक्षा कैसे की जाती है? 2 कर्मफल के परिणाम में विलंब क्यों होता है?
3 मानवीय अंतःकरण की विकसित चेतना का अनुभव कैसे किया जाता है? 4 मनुष्य का आत्मिक स्तर विकसित होने की कौन सी 2 कसौटियां हैं?
5 दुष्कर्म करने से हानि अपार है, लाभ कुछ भी नहीं सिद्ध करें। 6 कानून में ऐसी कौन सी कमी है कि सही अपराधी पकड़ में ही नहीं आते?
7 उन्नतिशील बनने का रहस्य क्या है?
8 अनैतिक व्यक्ति को लोग प्यार क्यों नहीं करते? 9 सामाजिक तिरस्कार एवं असहयोग भी क्षण के लिए भी शांति का अनुभव क्यों नहीं करता है?
कथाएं। 1 किसी ओझा ने एक बांझ स्त्री को बहका दिया, यदि किसी पड़ोसी के घर आग लगा दे तो तू शीघ्र संतानवती हो सकती है।
उसके पति ने समझाया, भी मुझे ऐसे पुत्र नहीं चाहिए जो दूसरों को यातना देकर मिले, पर मूर्ख स्त्री मानी नहीं, एक घर को आग लगा दी।
उस मकान के 5 जानवर आग में जल मरे, देव योग से उसे 5 पुत्र हुए।
स्त्री बड़ी खुश हुई, पर जैसे जैसे वे बड़े हुए और विवाह के दिन पास आते गए, एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई, स्त्री निःसंतान की निःसंतान रह गई। पति ने कहा, देख लिया, कर्मफल इसे कहते हैं, यह 5ों पुत्र वह 5 जीव थे जिन्हें तूने आग लगाकर जला दिया था।
2 भगवान कृष्ण एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए बहेलिए ने उसे किसी हिरण की आंख समझकर बांध चला दिया, पर पास जाकर देखा तो भगवान कृष्ण थे। उनके प्राण निकलते देखकर बहेलिया अपने दुष्कर्म के लिए रोने लगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तात दुख मत करो भगवान, हुआ तो क्या, कर्मफल से मैं भी नहीं बच सकता। पिछले जन्म में मैं राम था, तुम थे बलि, तुम्हें मैंने छिपकर मारा था, उसी कर्म का फल मुझे अब मिल रहा है।
कोई भी कर्मफल से कभी बच नहीं सकता। 3 रावण की मृत्यु, देह में छेद ही छेद देखकर हनुमान जी ने लक्ष्मण से पूछा, तात रावण के शरीर में यह असंख्य छिद्र कहाँ से आ गए? लक्ष्मण कहने जा रहे थे कि यह सब भगवान राम के बाणों का प्रताप है।
तब तक राम स्वयं बोल पड़े, पवनसुत, यह असंख्य छिद्र रावण की असंख्य बुराइयां हैं। रावण उन्हें स्वयं नहीं निकाल सकता तो ये स्वतः निकल भागी, निकलते निकलते रावण को भी नष्ट कर गईं। 4 नहुष ने अपने पुरुषार्थ से इंद्रपद प्राप्त कर लिया, पर इससे उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि इंद्र की धर्मपत्नी शची को ही अपने रानी बनाने और उनका सतीत्व नष्ट करने की बात सोचने लगे।
काम वासना की आग ने उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उन्होंने सप्तऋषियों को ही पालकी में जोत दिया और शची के महल की ओर चल पड़े।
ऋषियों को पालकी उठाने का अभ्यास था नहीं, जबकि कामातुर नहुष चिल्ला रहा था, और तेज चलो और तेज चलो। 5 महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का सौंदर्य देखकर इंद्र और चंद्रमा दोनों का काम विकार जाग उठा। महर्षि प्रतिदिन मुर्गे की आवाज सुनकर स्नान करने जाते थे, उस दिन इन दोनों ने छल किया, स्वयं मुर्गे की बांग दे दी, और जब गौतम आश्रम से चले गए तो अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। गौतम यह बात जान गए, उन्होंने इंद्र और चंद्रमा दोनों को शाप दे दिया। कामुकता का ही फल है कि देवता होकर इंद्र और चंद्रमा दोनों आज तक कलंकित हैं। 6 कल्याण पाद की तनिक सी भूल पर ऋषि पुत्र प्रचेता ने शाप दे दिया, तू राक्षस हो जा, प्रचेता में साधना की शक्ति तो थी ही, वाणी सिद्ध हुई। 7 वसु अपने पत्नियों के साथ धरती पर विचरण के लिए आए। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदी गाय बंधी थी, उसे देखकर छोटे वसु की पत्नी का मन उसे लेने का हो गया, उसके लिए वसु को चोरी करनी पड़ी। उसी का दंड था कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। भीष्म पितामह वह वसु ही थे। एक बुढ़िया ने बड़े धर्म कर्म किए।
अंत समय विष्णु के दूत उसे लेने आए। बुढ़िया उन्हें देखकर डर गई और बोली, देखो मुझे अभी कई आवश्यक काम करने हैं, मुझे एक वर्ष के लिए छोड़ जाओ।
विष्णु के दूत तथास्तु कहकर लौट गए। बुढ़िया ने एक वर्ष धन कमाने में लगाया। अनुचित लोभ के कारण उसने नीति अनीति कुछ भी न देखी। एक वर्ष पीछे यमदूत वहां पहुंचे तो बुढ़िया बोली, पहले तो विष्णु दूत आए थे, अब तुम लोग कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, बुढ़िया पहले तूने अच्छे कर्म किए थे सो विष्णु दूत भेजे गए।
भगवान के यहाँ तो कर्मों का हिसाब है। एक वर्ष में तूने पाप ही पाप किए हैं, सो उठ और नरक की तैयारी कर।
सिक्स दुष्कर्मों के दंड से प्रायश्चित ही छुड़ा सकेगा। प्रश्न वन, कौन सी वस्तु मनुष्य को महत्वपूर्ण काम नहीं करने देती?
दो, पाप और आंतरिक दुर्बलताएं किस तरह पतित करती हैं? तीन, कष्ट साध्य रोगों का कारण क्या है?
फोर्थ, दुष्कर्म और कुविचार किस प्रकार प्रभाव डालते हैं?
पांच, पाप से छुटकारा कैसे मिल सकता है?
सिक्स, आत्मा को बल किस प्रकार मिलता है? सेवन, प्रायश्चित के नाम फैली विकृतियां बताओ। एट, आत्मा शोधन का शुद्ध स्वरूप क्या है? नाइन, क्या सस्ते कर्मकांड प्रायश्चित की आवश्यकता पूरी करते हैं? 10. आत्मा की ईश्वरीय व्यवस्था की जानकारी दो। कथाएं 1. वृद्धावस्था के कारण एक बूढ़े के हाथ पांव कांपा करते। इससे खाने को दी गई चीजें बिखर जाती, फर्श खराब हो जाता, बर्तन टूट जाते। उसका लड़का और बहू दोनों बड़े नाराज होते।
आखिर उनने बूढ़े के लिए घर के बाहर लकड़ी के बर्तनों में खाने का प्रबंध कर दिया।
एक दिन उनका लड़का लकड़ी का टुकड़ा काट छांट रहा था।
उसके माता पिता उसके पास आए और बोले, यह क्या कर रहा है? लड़का बोला, पिताजी आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तब बाहर खाना देना पड़ेगा, उसी के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ। यह सुनकर दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और अपने बूढ़े पिता के साथ दुर्व्यवहार करना बंद कर दिया। दो, अब्राहम लिंकन को बचपन में महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने का शौक था।
गरीबी के कारण वे पुस्तकें खरीद नहीं पाते थे, मांगकर पढ़ते थे। एक दिन वह पड़ोस के एक संभ्रांत व्यक्ति से एक पुस्तक मांगने गए। पुस्तक कीमती थी।
उन्होंने दे तो दी पर यह स्पष्ट कह दिया कि पुस्तक खराब हुई तो उसकी कीमत वसूल कर लूंगा।
लिंकन पुस्तक ले आए, रात बहुत देर तक पढ़ते रहे।
हवा के शीतल झोंकों के कारण नींद आ गई, पुस्तक जमीन में गिर गई। रात में मेघ आया, उसमें पुस्तक खराब हो गई।
लिंकन बहुत दुखी हुए। कीमत चुकाने को पैसे थे नहीं, अतएव उन्होंने उन सज्जन के खेतों पर 3 दिन तक धान काटकर पुस्तक का मूल्य चुकाया। 3. बहादुर शाह जफर रंगून में निर्वासित जीवन जी रहे थे। अंग्रेज उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे थे।
एक दिन उनके एक संबंधी ने सुझाया, आपको इतनी तंगी में रखा जा रहा है, आप विरोध क्यों नहीं करते? जफर हंसे और बोले, अभी तो मुझे और कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि देशवासियों की रक्षा के कर्तव्य से गिर जाने का पाए पाए दंड इसी जीवन में भुगत लूं। 4. माँ यह कौवा काला क्यों है? एक बच्चे ने छत पर बैठे कौवे की ओर इशारा करके अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, बेटा जो भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान दिए बिना चाहे जो खा जाए, चाहे जिसकी छीन कर खा जाए, कोई न हो तो चोरी कर ले, इन सब कारनामों को तुम क्या कहोगे?
काली करतूत, बच्चे ने कहा।
बस तो बेटा, इसकी काली करतूतों के कारण ही भगवान ने इसे काला बनाया।
5. बुद्ध धर्म की नास्तिकतावादी विचारधारा का खंडन करने के लिए बुद्ध धर्म का ज्ञान आवश्यक था, इसलिए कुमारिल भट्ट ने तक्षशिला में प्रवेश तो ले लिया पर वहां के नियम के अनुसार उन्हें पहले बुद्ध धर्म में निष्ठा की सौगंध लेनी पड़ी। वहां का अध्ययन समाप्त करने के बाद कुमारिल भट्ट ने बुद्ध धर्म को नया जीवन देने में सफल भी रहे पर झूठ के प्रति उनकी आत्मा में अंतर्द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। यद्यपि उन्होंने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोला था, तथापि झूठ लोगों के जीवन का ध्येय न बन जाए इसके लिए उन्होंने अग्नि में जलकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। 6. पांडवों ने एक नियम बना लिया था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ सहवास कर रहा होगा तब दूसरा भाई उधर नहीं जाएगा, यदि गया तो उसे 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा। एक बार हस्तिनापुर में शेर घुस आया। उसे मारने के लिए अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। अस्त्र वहां रखे थे जहां धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांतवास में थे। इधर गायों की रक्षा का प्रश्न, उधर मर्यादा की बात, आखिर अर्जुन अंदर चले गए और अस्त्र उठा लाए। शेर को मारकर वे अज्ञातवास के लिए चल पड़े।
घर वालों ने बहुतेरा समझाया कि यह तो आपत्ति धर्म की बात थी, आपको जंगल नहीं जाना चाहिए। इस पर अर्जुन ने कहा, भूल कैसी भी क्यों न हो उसका दंड भुगतना ही चाहिए, कहकर वे जंगल चले गए।
7. श्रावस्ती ने नागर सेठ ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान बिना तप किए क्या भगवान नहीं मिल सकता? तथागत चुप रहे। एक दिन वह सेठ के घर आमंत्रित हुए। सेठ ने बढ़िया खीर बनाई। भोजन के लिए उपस्थित तथागत ने अपना कमंडल आगे कर दिया, बोले, खीर इसी में डाल दो, लेकिन इसमें गोबर है। सेठ बोला, इससे खीर खराब नहीं हो जाएगी। तथागत हंसे, बोले, वत्स, अपने को शुद्ध न करो तो ईश्वर प्रकाश मनुष्य में आकर भी उसे आनंद नहीं दे सकता। 7. हम कामना ग्रस्त न हो, प्रगतिशील बने। प्रश्न 1.
प्रगति किसे कहते हैं?
2.
प्रगति का मूल तथ्य क्या है?
3. सच्ची प्रगति क्या है? 4.
भारत विदेशी शासकों से क्यों परास्त हुआ?
5. कामनाग्रस्त व्यक्ति अशक्त क्यों रहते हैं? 6.
अशनाएं कितनी प्रकार की होती हैं? ये अवांछनीय एवं खतरनाक क्यों कही जाती हैं?
7.
वाहवाही के लोभी किस प्रकार के भ्रोंद रचते हैं?
8. बुद्धि व्यभिचारिणी कैसे हो जाती है? 9.
आनंद किस में है?
10. यशस्वी बनने का सच्चा उपाय कौन सा है? 11. समर्थता कैसे प्राप्त होती है? कथाएं. 1. भोज ने सारे राज्य को दावत दी.
चारों ओर से नर नारी आकर दावत का आनंद लेने लगे. कोई रह तो नहीं गया यह देखने के लिए. भोज वेश बदलकर राजपथ पर जा रहे थे तभी सामने से आता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा दिखाई दिया. भोज ने पूछा, भाई भोज ने दावत दी है, तुम क्यों नहीं गए?
बूढ़े लकड़हारे ने उत्तर दिया, मुफ्त का खाना खाकर मैं अपने बच्चों को निकम्मा नहीं बनाना चाहता. भोज यह सुनकर अवाक रह गए. टू पुरुष अपनी पत्नी को पतिव्रत की शिक्षा दे रहा था, इस तरह वह अपने कर्तव्य से हटना चाहता था.
स्त्री बोली, जाओ, देश पर दुश्मन चढ़ते आ रहे हैं,
पहले उन्हें मारकर कर्तव्य पालन करो, फिर मुझसे पूछना पतिव्रत किसे कहते हैं. 3. सरदार भगत सिंह ने अपने देश को देश सेवा में सौंप दिया. अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने अपने परिवार का आश्रय भी त्याग किया.
उनको इस त्यागवृत्ति को देखकर कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य श्री शार्दुल सिंह ने उन्हें 150 लेने से मना करते हुए कहा, जीवन निर्वाह के लिए 30 काफी है, मुझे कमाई नहीं देश की सेवा करना है.
4. थीमा की कन्या योजनगंधा को देखकर महाराज शांतनु उस पर आसक्त हो गए. उन्होंने निषादराज से कन्या उन्हें विवाह देने का आग्रह किया.
निषाद ने कहा, यदि आप वचन दें कि इस कन्या के गर्भ से उत्पन्न बालक की राज्य का उत्तराधिकारी होगा तो मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति न होगी.
शांतनु यह सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए, पर जैसे ही उनके पुत्र भीष्म ने यह सुना उन्होंने राजगद्दी का मोह त्याग कर प्रतिज्ञा की वे आजीवन अविवाहित रहेंगे. इस तरह पुत्र की प्रगतिशीलता से एक कठिन समस्या सुलझ गई और समाज को भीष्म की शक्तियों का लाभ जन उत्थान के लिए मिल गया. 5. स्वामी रामतीर्थ के भाषणों से अमेरिका इतना प्रभावित हुआ कि जिन्हें एक ही साथ 12 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा. प्रस्ताव को अमान्य करते हुए स्वामी जी ने कहा, सेवा का मूल्य आत्मानुभूति आत्मा सुख है, उपाधि लेकर मैं अपना अहंकार बढ़ाना नहीं चाहता.
मेरे साथ लगी स्वामी जी और M0A0 यह दो उपाधियों ही बहुत हैं.
6. स्वामी रामतीर्थ तब पढ़ते थे. अध्यापक ने एक लकीर खींच कर कहा, इसे बिना काटे छोटा कर दो.
सब लड़के हैरान थे. तब रामतीर्थ ने जाकर बगल में उससे बड़ी लकीर खींचकर कहा, लो पहली लकीर छोटी हो गई.
असामान्य कार्य करने से मनुष्य बड़ा बनता है. 7. महाराज संजय ने पुत्र प्राप्ति हेतु तप किया. तप से प्रसन्न हुए नारद जी ने पूछा, तात आपको कैसा पुत्र चाहिए? संजय बोले, स्वर्णबिष्टि भगवान, जिसका मलमूत्र भी सोना हो, थूक लार निकले वह भी सोना हो.
नारद संजय के इस लोभ पर मुस्कुराए और एवमस्तु कहकर चले गए.
कुछ दिन पीछे संजय को सचमुच ऐसा ही पुत्र पैदा हुआ. इस विचित्र बालक की खबर दूर दूर तक फैली. कुछ डाकुओं ने यह बात सुनी तो वे बच्चे का अपहरण कर ले गए.
स्वर्ग का बंटवारा कैसे हो, इस बात पर डाकुओं में परस्पर कहासुनी हो गई. तय हुआ कि उसे मारकर एक बार में ही सारा सोना निकालकर बांट लिया जाए. लड़का काट डाला गया, पेट में सोना नहीं निकला. इस पर डाकू हैरान थे. तभी राजा के सिपाही वहां पहुंच गए और उन्होंने डाकुओं को मार डाला.
सारी खबर महाराज संजय ने सुनी तो उनके मुंह से सहसा यही निकला, पाप और सर्वनाश की जड़ लोभ ही है. 8. पारसी धर्मगुरु रवि मेरहर के तीनों पुत्र बीमार होकर मर गए. शाम को मेरहर घर लौटे तो पत्नी ने पानी दिया और हाथ मुंह धुलाकर खाना परोसा. भोजन करते समय मेरहर ने पूछा, भद्रे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे?
इस पर पत्नी ने कहा, स्वामी कल हम लोग जिस स्त्री से जेवर लाए थे वह आज मांगने आई थी. रवि मेरहर बोले, दे क्यों नहीं दिए, पराई वस्तु की कामना क्यों की जाए? ठीक है कहकर वह उन्हें शयनागार में ले गई जहां तीनों बच्चों के शव पड़े थे.
मेरहर फूट फूट कर रोने लगे तो पत्नी ने कहा, स्वामी आप अभी अभी तो कह रहे थे कोई अपनी वस्तु लेते तो उसका दुख नहीं करना चाहिए.
पुत्र भगवान के थे, उसने ले लिए तो डैक क्यों कर रहे हैं?
मेरहर का चित यह सुनकर हल्का हो गया. 9. कौशाम्बी का विश्वकर्मा चंपक अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था. उसकी पत्नी हव्या भी बड़ी ईमानदारी थी. एक बार कौशाम्बी में अकाल पड़ा. एक दिन चंपक अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था.
रास्ते में एक सोने का कंगन पड़ा दिखा.
चंपक ने सोचा कहीं हव्या को उसका लोभ न आ जाए, वह उस पर धूल डालकर उसे ढकने लगा. हव्या पति का अभिप्राय समझ गई. उसने कहा, स्वामी नाहक धूल पर धूल डाल रहे हैं. उनकी यह ईमानदारी देखकर इंद्र का हृदय द्रवित हो गया. उन्हें वृष्टि के लिए विवश होना पड़ा. 10. भगवान बुद्ध उपदेश देकर उठे तो एक परिव्राजक ने पूछा, भगवान आपके उपदेशों पर थोड़े लोग चलते हैं फिर भी आप कभी निराश क्यों नहीं होते?
तथागत ने उत्तर दिया, सफलता और यश की कामना करने वाला कभी महान कार्य नहीं कर सकता। महान कार्य सदैव निष्काम भाव से किए जाते हैं।
8. भाग्यवाद हमें नपुंसक और निर्जीव बनाता है। प्रश्न:
1. भाग्यवाद और पुरुषार्थ में जिस प्रकार अंतर है, उसी तरह किन्हीं और दो भिन्न उदाहरणों को बताएं। 2. पुरुषार्थ के असफल होने पर क्या हानि है तथा तब भाग्यवाद से क्या लाभ है।
3. भाग्यवाद किस प्रकार व्यक्ति को अकर्मण्य बना देता है। 4. भाग्यवाद का प्रचारक कौन था तथा उसका कारण क्या था।
5. विदेशी शासक भारतीय जनता पर किस प्रकार शासन किया करते थे। 6. भाग्यवाद से हमें विदेशी शासकों के राज्य के समय क्या हानियां उठानी पड़ी। 7. यह आप कैसे कह सकते हैं कि भाग्यवाद ने हमें नपुंसक बना दिया है। 8. विदेशी शासकों के जाने के बाद भी 23 वर्ष बीत जाने पर भी हम उन्नति क्यों नहीं कर सके। 9. भाग्यवाद उपयोगी भी है।
कब, कैसे, 10. कर्म भाग्य कब बनता है। कथाएं: 1. एक युवक को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने 25 तारीख को बुलाया गया।
युवक 21 तारीख को चलने को हुआ तो घर वालों ने कहा, आज शनिवार है, अच्छा दिन नहीं, कल जाना। दूसरे दिन पंडित जी बोले, रवि, शुक्र पश्चिम की यात्रा वर्जित है, सो वह दिन भी गया। 23 तारीख को योगिनी बाएं पड़ेगी, कहकर ज्योतिषी ने चक्कर में डाल दिया।
24 को कपड़े पहनकर वह चलने को हुआ कि एक बच्ची ने छींक दिया, यद्यपि लड़की को जुकाम था पर घर वालों ने नहीं जाने दिया। 25 को घर से बाहर निकलते ही बिल्ली रास्ता काट गई।
अपशकुन टालने के लिए जब तक लड़के को रोककर रखा गया, रेलगाड़ी निकल गई।
युवक 26 को ऑफिस पहुंचा तो दरवाजे पर लिखा पाया, नो वैकेंसी, अब कोई खाली स्थान नहीं। 2. स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने सिमीटर शहर घूमते हुए एक 8 वर्षीय बच्चे को अखबार बेचते देखा।
स्वामी जी ने पूछा, तुम तो किसी संपन्न घर के लगते हो, अखबार क्यों बेचते हो। लड़के ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान जी, मेरे घर वाले सचमुच संपन्न हैं, पर हम किसी के आश्रित नहीं रहना चाहते, अपना भाग्य अपनी मुट्ठी में रखते हैं।
स्वामी जी के मुंह से इतना ही निकला, तभी तो तुम सब इतने संपन्न हो। 3. नारद जी पृथ्वी पर लोगों की कुशल देखने आए, वे जिससे भी मिले सबने दुखों का ही रोना रोया।
कोई अन्न के लिए, कोई वस्त्र के लिए, कोई स्त्री पुत्र और मकान के लिए।
एक स्थान पर साधुओं की जमात लगी थी, उन्होंने नारद जी को फटकारा, भगवान हमारे लिए मिष्ठान भोग क्यों नहीं देते।
नारद जी हैरान होकर लौटे और भगवान से कहा, भगवान आपने इन लोगों को अभावग्रस्त क्यों बनाया।
भगवान ने हंसकर कहा, नारद,
मैं कर्म करने वाले को ही कुछ दे सकता हूँ, जो दीनता और दरिद्रता से खुद नहीं लड़ सकता, उसका तो मैं भी भला नहीं कर सकता।
4. 5 अपंग खड़े भगवान को दोष दे रहे थे, अंधा कह रहा था, मेरी आंखें होती तो जहां भी पाप ताप देखता उसे ठीक करता, लंगड़ा बोलो मैं दौड़ दौड़ कर दुखियों की सेवा करता।
बहरा बोला, किसी डहकी की आवाज मेरे कानों तक पहुंचती तो मैं उसके डैक दूर करने तक चैन न लेता।
पास ही खड़े वरुण देव ने उनकी बातें सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और सबकी शारीरिक त्रुटियां दूर कर दी। फिर क्या था, आंखों वाला सिनेमा देखने, बहरा लाउडस्पीकर के गाने सुनने, लंगड़ा शहर घूमने के लिए निकल पड़े, लोक कल्याण दूर आत्मा कल्याण तक भूल गए।
वरुण यह देखकर पछताए और अनायास कृपा का यही फल होता है कहकर अपनी दी वस्तुएं वापस कर ली।
5. लक्ष्मी जी कृपा अनायास ही हुई थी, सो लोगों ने सोने चांदी से अपने घर भर लिए तो उद्योग कृषि आदि सभी छूट गए। सब लोग सोना चांदी लिए घूम रहे थे पर किसी को पेट भरने के लिए एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिल रहा था। धरती माता ने लक्ष्मी से कहा, बहन अपनी माया समेटो, मेरे बच्चों को परिश्रम और पुरुषार्थ पर विश्वास करने दो, ये उसी से जिंदा रहेंगे। 6. पहाड़ की चोटी पर खड़े 3 व्यक्ति प्यास से पीड़ित हुए।
एक ने कहा, घाटी उतरने का ही तो श्रम है, चलो नीचे उतर कर पी आते हैं। शेष 2 इस परिश्रम में नहीं पड़ना चाहते थे, अतएव वे कभी इंद्र कभी वरुण तो कभी भगवान की स्तुति कर कह रहे थे, भगवान पानी बरसाओ अन्यथा जान जाती है।
जब तक ये दोनों खड़े स्तुति करते रहे, तीसरा नीचे उतर कर झरने के शीतल जल से अपनी प्यास बुझा आया।
7. तालस्टाया के पास खड़ा एक युवक बड़ा डैक व्यक्त कर रहा था, कह रहा था, मेरी नौकरी नहीं लग रही, घर में कुछ नहीं, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, मुझे कुछ नहीं दिया। तालस्टाया बोले, चाहो तो 1,000 रुपये में अपने पैर, 5,000 में हाथ, 10,000 में नाक और 20,000 में आंखें मैं बिकवा सकता हूँ। युवक भौचक्का सा खड़ा बोला, यह आप क्या कह रहे हैं, क्या मैं अपना शरीर कटवाऊं। तालस्टाया हंसे और बोले, नहीं जी, शरीर कटवाने की बात नहीं कह रहा, मैं तो यह कह रहा हूँ 50,000 के तुम्हारे इतने ही अंग है, कुल शरीर तो लाखों का है।
इतना मूल्यवान शरीर पाकर भी तुम भगवान को भाग्य को दोष देते हो। 9. बौद्धिक परावलंबन का जुआ उतार फेंकें। प्रश्न:
1. ज्योतिष कितने प्रकार का होता है,
उसमें कौन सा श्रेष्ठ है। 2. फलित ज्योतिष की हानियों पर प्रकाश डालते।
3. विवाह के पूर्व कुंडली मिलाने से लाभ है या हानि। चार ग्रह दशा में डराकर जनता को गुमराह करना वहां तक उचित है।
क्यों? 5 2000 वर्ष की गुलामी का भयंकर दुष्परिणाम क्या हुआ? 6 सिद्ध कीजिए, भाग्यवाद निरर्थक है। 7 उन्नति या प्रगति का आधार स्वतंत्र चेतना है या भाग्य। 8 स्वतंत्र चिंतन एवं पुरुषार्थ पूर्ण कर्तृत्व ही सुख के सारे द्वार खोलता है, सिद्ध कीजिए। 9 सिद्ध कीजिए, शकुन मुहूर्त कुंडली राशिफल मनुष्य को भयभीत व कमजोर बनाते हैं। 10 असफलता का मूल कारण क्या है? कथाएं।
एक गधे तब जंगल में खूब मौज से रहते थे, एक लोमड़ी ने उन्हें बहका दिया, कहानी सेना बना ली है और तुम पर शीघ्र ही आक्रमण करने वाले हैं।
गधे घबरा गए और बिना सोचे विचारे जंगल छोड़कर गांव में धोबियों की शरण चले आए। सीधा सादा जीव बौद्धिक परावलंबन के कारण धोबी का गुलाम बना और भारवाहक भी। उसी दिन से उसका नाम गधा पड़ा। टू बच्चा दिन भर चारपाई पर पड़ा सोता रहा। पिता ने पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी गांव के उपदेशक कह रहे हैं मनुष्य को शांति का जीवन बिताना चाहिए, सो शांति चित पड़ा रहा।
पिता ने कहा, बेटे उपदेश के अर्थ को न समझने से यही होता है। 3 साहूकार ने अपने सिक्कों में से खोटों को निकाल डालने के लिए उनकी जाँच शुरू की।
खोटे सिक्के जोर से चमक रहे थे, साहूकार पहचान नहीं पाया।
उसकी पुत्री बोली, बाबा खरे खोटे की पहचान देखने से नहीं पटकने से होती है। साहूकार ने सिक्कों को पटकना शुरू किया, जो खरी आवाज करता था वह खरा और जिसमें आवाज ही नहीं। खोटे सिक्के निकाल दिए और समझ लिया, कोई भी बात हो उसकी परख बाहर से नहीं भीतर से करनी चाहिए। 4 एक पहाड़ पर 2 चींटियां रहती थीं, एक चीनी की खान में दूसरी नमक की खान में। चीनी की खान वाली चींटी ने नमक वाली को भोज दिया। दूसरे दिन नमक की खान वाली चींटी आए और दिन भर चीनी की खान में रही, पर उसे चीनी का एक कण भी न मिला।
चलते समय उसने शिकायत की, बहन तुमने नाहक तंग किया, चीनी का एक टुकड़ा भी तो नहीं है तुम्हारे यहाँ।
पास में ही चीनी की खान वाली चींटी का लड़का खड़ा था।
नमक वाली चींटी के मुंह में उंगली डालते हुए उसने कहा, मौसी जी पहले यह जो मुंह नमक का टुकड़ा लिए हो इसे तो निकालो। वह टुकड़ा निकालते ही उसने भर पेट चीनी खाई।
जो लोग पूर्वाग्रह में पड़े हैं वे नमक वाली चींटी के समान है।
5 लोकमान्य तिलक समुद्री यात्रा पर जाने वाले थे, पंडितों ने टोका समुद्र यात्रा धर्म विरुद्ध है। तिलक काशी जी गए और महो महापाध्याय से कहा, कोई उपाय निकालिए जिससे समुद्री यात्रा में धर्महानि न हो। महो महापाध्याय ने कहा, उपाय है पर 5000 रुपये लगेंगे। तिलक हंसे और बोले, जो इतना स्वार्थी और संकीर्ण हो वह धर्म नहीं हो सकता।
वे वहां से लौट आया और बिना व्यवस्था के काम चलाया। 6 दिल्ली सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूछा गया कि बस स्टैंडों पर बने प्रतीक्षा घरों में छाया क्यों नहीं की गई, तो अधिकारी बोले, ऐसा इंग्लैंड में कहीं नहीं होता।
इस तरह की बौद्धिक पराधीनता ही मनुष्य को गुलाम बनाती है। 7 एक थे पंडित जी, प्रतिदिन पूजा के बाद शंख बजाते। शंखध्वनि सुनते ही पड़ोसी धोबी का गधा जोर जोर से रेंकने लगता।
पंडित जी बड़े खुश होते और कहते, गधा पूर्व जन्म का योगी है, उसका नाम भी उन्होंने शंखराज रख लिया था। एक दिन शंखराज नहीं बोले, पता चला गधा मर गया है। पंडित जी ने इस डैख में अपने बाल मुड़ा डाले। शंखराज मर गया है यह खबर और पंडित जी के सिर मुड़ाने की खबर पाकर उनके यजमानों को भी सिर मुड़ाना पड़ा।
उसी दिन गांव में एक सिपाही आया था, उसने शंखराज के मरने की बात सुनी तो खुद भी बाल मुड़ाए। धीरे धीरे पूरी फौज घुटमुंड हो गई। हैरान अफसरों ने पता लगाया तो मालूम हुआ शंखराज कोई व्यक्ति नहीं, गधा था। लोगों ने तो अंधविश्वासवश सिर मुड़ाए, किसी ने वस्तु स्थिति जानने का प्रयत्न नहीं किया। अंधविश्वास ऐसे ही फैलता है। 10 ज्ञानयोग कर्मयोग और भक्तियोग की महान साधना। प्रश्न 1 योग की परिभाषा बताओ।
2 शारीरिक योग कितने हैं, उनसे क्या लाभ मिलता है। 3 मानसिक योग कितने प्रकार के होते हैं। 4 योग का प्रयोजन और सदुपयोग क्या है।
5 ज्ञान योग किस प्रकार बंधन खोलता है। 6 कर्मयोग की व्याख्या करो। 7 सादगी श्रेष्ठता का कैसे निर्माण करती है। 8 भक्ति योग का क्या अर्थ है। 9 वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे जागती है। 10 आत्मा परमात्मा में किस प्रकार मिलता है। कथाएं।
एक इंग्लैंड की कॉमन सभी में वाद विवाद चल रहा था। एक सदस्य ने दूसरे से कहा, महोदय वह दिन याद करिए जब आप जूतों पर पॉलिश किया करते थे। माननीय सदस्य ने उत्तर दिया, बंधु मैंने पॉलिश भी पूरी ईमानदारी और भगवान का काम समझ कर की है।
2 भक्त कवि पोतना ने भागवत का संस्कृत अनुवाद किया। लोगों ने सलाह दी, इसे आंध्र महाराज को समर्पित कीजिए, वो बहुत सा धन मिलेगा। पोतना उस समय तो मुस्करा भर दिए। पीछे ग्रंथ छपा तो लिखा था, प्राणियों की भलाई की इच्छा से लिखी गई यह भगवान की प्रेरणा, भगवान को ही अर्पण करता हूँ। 3 सूफी संत बीबी राबिया जिन दिनों अपनी ईश्वर भक्ति के लिए विख्यात थी, उन्हीं दिनों इबलीस नामक प्रबल नास्तिक भी हुआ जो दिन रात राबिया की बुराई किया करता।
एक दिन बीबी राबिया से एक व्यक्ति ने कहा, इबलीस तो आपकी दिन रात बुराई करता है, आप क्यों नहीं करती। इस पर राबिया ने उत्तर दिया, वह भी तो उसी भगवान का पुत्र है जिसकी मैं हूँ, अपने भाई की बुराई में कैसे करूँ। इबलीस को इसका पता चला तो वह राबिया के चरणों में नतमस्तक हो गया।
फोर्थ, संत शुकदेव ने अपने पिता वेद व्यास के समस्त ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन प्रारंभ कर दिया, उससे वे मुक्ति के अधिकारी बन गए। एक दिन व्यास देव से एक शिष्य ने पूछा, आपने पुत्र को कौन सी साधना सिखाई, तो उन्होंने कहा, कोई नहीं शुक, अपनी ज्ञान साधना से मुक्ति हुए।
पांच, स्वामी विवेकानंद ने अपनी साधना उपासना छोड़ दी और कलकत्ता में फैले प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में जुट गए। एक भाई ने पूछा, महाराज आपकी उपासना साधना का क्या हुआ। स्वामी जी ने कहा, भगवान के पुत्र दिखी हूँ और मैं उनका नाम जप रहा हूँ, क्या तुम इसे ही उपासना समझते हो।
पैसे की कमी के कारण जब वे रामकृष्ण आश्रम की जमीन बेचने को तैयार हो गए तो फिर एक शिष्य ने पूछा, महाराज आप गुरु स्मारक बेचेंगे क्या।
विवेकानंद ने उत्तर दिया, मठ मंदिरों की स्थापना संसार की भलाई के लिए होती है, यदि उसका उपयोग भले काम में होता है तो इसमें हानि क्या है। छह, कहीं राग कहीं द्वेष कहीं रोष कहीं क्लेश देखकर पिप्पल का मन सामाजिक जीवन से विरक्त हो गया।
वे वन में जाकर योगाभ्यास करने लगे। एक दिन वे अत्यंत अशांत चित बैठे थे, तभी उधर से सारसों का एक जोड़ा निकला। मादा सारस ने नर से पूछा, स्वामी महर्षि पिप्पल और सुकर्मा की साधना में किसकी साधना श्रेष्ठ है।
नर ने उत्तर दिया, सुकर्मा की, क्योंकि वह विरक्त होकर भी संसार की सेवा में जुटा हुआ है, भगवान भक्ति से ही नहीं कर्तव्य पालन से कहीं अधिक प्रसन्न होते हैं। पिप्पलाद पक्षियों की भाषा जानते थे, वे उठकर सुकर्मा के पास गए तो देखा वह अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में तल्लीन है।
पिप्पल ने सुकर्मा के मन में अद्भुत शांति देखी, उस दिन से उन्होंने भी सामाजिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना प्रारंभ कर दिया।
साथ अपने साथ वहां के राजा को भी पाकर एक संत के हजारों शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, अब तो आप हमारे गुरु भाई हो गए, गुरु भाई होकर भी हमसे माल गुजारी लेंगे क्या। राजा ने द्विविधा में आकर सबका टैक्स माफ कर दिया, पर उसके शासन के प्रबंध के लिए आर्थिक व्यवस्था में दबाव पड़ने लगा।
संत ने यह सुना तो राजा को पास बुलाया और कहा, राजन जो शिष्य दीक्षा लेकर कर्म न करें आलसी हो जाएं, उन्हें तू नकली शिष्य जान।
राजा ने भूल समझी और फिर से कर लगा दिया।
तब कहीं शिष्यों का आलस्य छूटा और शासन व्यवस्था संभली। एक सिखों के चौथे गुरु रामदास के अनेक शिष्य थे, वे सब एक से एक बुद्धिमान और तार्किक थे। अर्जुन देव नाम का एक दूसरा लड़का भी था जो केवल गुरु के आदेश पालन और उनके प्रति श्रद्धा को ही अपनी सच्ची शिक्षा व संपत्ति मानता था। उसे आश्रम के बर्तन मांजने का काम दिया गया था, इसलिए दूसरे लड़के उसे सदैव ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते। पर जब एक दिन उत्तराधिकार की बात आई तो गुरु ने यह कहते हुए, लोक सेवक की सबसे बड़ी योग्यता श्रद्धा और अनुशासन है, उन्होंने अर्जुन देव को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अन्य शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। नाइन्थ, स्वर्ग में तरह तरह के सुखोपभोग मिलने पर भी विद्रूप प्रसन्न नहीं थे। इंद्र उनके पास गए और पूछा, महाराज यहाँ आपको कुछ त्रुटि दिखाई दे रही है क्या। हाँ देवराज, विद्रूप ने कहा, यहाँ और सब कुछ तो है पर यहाँ कर्म का अभाव है, बिना कर्म के मुझे स्वर्ग भी पसंद नहीं, इसलिए मुझे तो कर्म लोक धरती में पहुँचा दो, जहाँ लोगों की सेवा का फिर से आनंद ले सकूं। इंद्र बोले, सच है महाराज, जिसे कर्म से स्वर्ग मिलता है उसे स्वर्ग से भी महान होना ही चाहिए। टेन, जिस व्यक्ति को स्वयं भगवान ने ही कहा था कि इसे पुत्र नहीं हो सकता, उसे एक साधारण साधु के आशीर्वाद से पुत्र हो गया, यह देखकर देवर्षि नारद के विस्मय का ठिकाना न रहा, वे सीधे स्वर्ग लोक पहुंचे और भगवान से उसका रहस्य पूछा। भगवान विष्णु ने उनका समाधान करते हुए कहा, नारद जो मेरे दिए आदेशों को पूरा करते और लोक कल्याण में तत्पर रहते हैं
वही मेरे सच्चे भक्त हैं, उन्हें मेरी व्यवस्था में परिवर्तन का भी अधिकार हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात।
11. खलीफा उमर नमाज पढ़कर खड़े हुए तो उन्हें एक फरिश्ता दिखाई दिया, उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी।
खलीफा ने पूछा, इस पुस्तक में क्या लिखा है। फरिश्ते ने जवाब दिया, उनके नाम जो भगवान की भक्ति किया करते हैं। उमर ने पूछा, इसमें मेरा भी नाम है क्या।
फरिश्ते ने सारी पुस्तक पलट डाली पर उसमें उमर का नाम न निकला। उमर दुखी खड़े थे, तभी दूसरा फरिश्ता आया,
उसके हाथ में भी एक पुस्तक थी। उमर ने पूछा, इसमें क्या लिखा है। फरिश्ता बोला, उनके नाम जिनका जप खुदा स्वयं करता है। उमर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी खुद भगवान उपासना करते हैं। फरिश्ते ने कहा, हाँ, जो संसार की सेवा में लगे हैं उनकी इबादत भगवान खुद करता है। यह कहकर फरिश्ता अपनी किताब वहीं छोड़कर गायब हो गया।
उमर ने पुस्तक उठाकर देखी तो उसमें पहला नाम उन्हीं का था। 11. आध्यात्मिक जीवन के पांच कदम। प्रश्न 1. अध्यात्मवादी की आकांक्षाओं एवं प्रेरणाओं का मूल स्रोत क्या होता है।
2. अध्यात्मवादी या देव जीवन किसे कहते हैं। 3. भौतिकवादी जीवन को पशु जीवन क्यों कहते हैं।
4. अध्यात्मवादी जीवन क्यों महत्वपूर्ण है।
5. जीवन में सदाचार नम्रता सादगी एवं साधना की क्यों आवश्यकता है।
6. आध्यात्मिक जीवन के 5 प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए।
7. दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या करना चाहिए।
8. दृष्टि शोधन से क्या समझते हो।
9. मितव्ययिता एवं ईमानदारी क्यों आवश्यक है।
10. आत्मा को परमात्मा के रूप में परिणित करने का प्रत्यक्ष आनंद कब व कैसे मिलता है। कथाएं।
1. आइजनहावर के राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बहुत से मित्रों प्रशंसकों ने उपहार दिए।
उन उपहारों की प्रदर्शनी लगाई गई। उपस्थित मेहमानों को संबोधित कर उन्होंने उपहार में मिले एक झाड़ू को हाथ में उठाते हुए कहा, यह है मेरा सर्वोत्तम उपहार जो मुझे सदैव सेवा और कर्तव्य पालन की याद दिलाता रहेगा। 2. चंपारण के किसानों के साथ ब्रिटिश सरकार ने बहुत अत्याचार किए। गांधी जी उसकी जाँच कर रहे थे, तब उनके कैंप सेक्रेटरी का काम आचार्य कृपलानी कर रहे थे।
कैंप से बहुत सी डाक कलेक्टर के पास जाती थी।
वह डाक श्री कृपलानी स्वयं लेकर जाते थे ताकि सरकारी कर्मचारी कोई गोलमाल न कर सके।
कलेक्टर को पता चला कि डाक लाने वाले आचार्य कृपलानी हैं, तो उसने पूछा, आप सेक्रेटरी होकर डाक लाते हैं। इस पर कृपलानी ने कहा, मैं सेक्रेटरी नहीं, मैं तो बापू का चपरासी हूँ।
कलेक्टर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। 3. आचार्य रामानुज उपदेश दे रहे थे, भगवान प्राणी मात्र में समाये हुए हैं, सब में अपना ही आत्मा देखना चाहिए। उपदेश एक चांडाल भी सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वह आचार्य प्रवर के पैर छूने को बढ़ा। आचार्य ने उसे देख क्रोध हो उठे और डांटा, मुझे छुएगा क्या। चांडाल ठिठक गया और बोला, महाराज तो फिर बताइए मैं अपने भगवान को कहाँ ले जाऊं। आचार्य की आंखें खुल गईं।
चांडाल को अंक में भरते हुए उन्होंने कहा, तात क्षमा करो,
आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। 4. रामकृष्ण परमहंस युवक थे, माता शारदामणि साथ रहती थी, तथापि वे पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहते थे। रानी रासमणि के जमाई मथुरादास को उनकी परीक्षा लेने की बात सूझी। एक दिन परमहंस देव को ले जाकर उन्होंने एक सुंदर वेश्या के कोठे पर छोड़ दिया, खुद छुपकर बैठ गए। सुंदरियां उन्हें कुत्सित हाव भाव द्वारा आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी, तो रामकृष्ण माँ माँ कहकर भाव विभोर हो गए। कामनिया यह देखकर अत्यधिक लज्जित हो गई। मथुरादास जी अपने इस कृत्य पर बहुत पछताए।
5. मुगलों के साथ हुए युद्ध में मराठों की विजय हुई। उन्होंने मुगलों के खजाने के साथ उनकी बहुत सी वस्तुएं भी लूट ली।
सैनिक मुगल खानदान की एक रूपवती कन्या को भी पकड़ लाए।
उसे शिवाजी के सामने इस ख्याल से उपहार स्वरूप प्रस्तुत किया गया कि उससे शिवाजी बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत सा इनाम देंगे, पर बात उल्टी निकली। शिवाजी ने कहा, मुगल है तो क्या नारी सर्वत्र पवित्र है।
फिर उन्होंने उस युवती की ओर देखकर कहा, तुम्हारी जितनी सुंदर मेरी माता होती तो मैं कितना सुंदर होता। यह कहकर उन्होंने युवती को सादर मुगलों के डेरे तक पहुंचा दिया। 6. अर्जुन तब इंद्रलोक में शस्त्र विद्या सीख रहे थे। उनके सौंदर्य पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी मोहित हो गई। वह एक रात चुपचाप अर्जुन के पास गई और बोले, मुझे आपकी तरह का एक सुंदर बालक चाहिए। अर्जुन उसके काम विकार को ताड़ गए।
एक क्षण चुप रहकर बोले, भद्रे संभोग से तो संभव नहीं, पुत्र ही हो पुत्री भी हो सकती है, फिर तुम्हें तो पुत्र अभी चाहिए, सो यह लो, अब से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ।
7. एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपने 5,000 के सिक्के संत रैदास सौंप दिए।
रैदास ने रुपयों की पोटली वहीं छप्पर में खोंस दी।
कुछ ऐसा हुआ कि वह आदमी तीर्थ यात्रा से 5 वर्ष बाद लौटा।
उसने जाकर रैदास से कहा, मेरे रुपये कहाँ हैं। रैदास ने छप्पर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां तुमने रखे थे वहीं से उठा लो।
पराये धन को मिट्टी की तरह देखने वाले संत की इस सच्चाई को देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया। 8. बाजीराव पेशवा और नवाब हैदराबाद के बीच युद्ध छिड़ गया। नवाबी सेना हार गई
और बचाव कर किले के अंदर चली गई। मराठों ने उस पर घेराबंदी डाल दी। नवाब की सेनाएं भूख से मरने लगी। मंत्रियों ने खबर बाजीराव पेशवा को दी और कहा, यह उपयुक्त समय है, हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो पेशवा ने उत्तर दिया, भूखों पर आक्रमण करना वीरता नहीं कायरता है, अभी तो उन्हें अन्न की जरूरत है। कहकर उन्होंने अपने भंडार से बहुत सी रसद नवाब के किले में भिजवा दी।
नवाब इस आत्मीयता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने युद्ध का इरादा छोड़कर पेशवा से संधि कर ली। 9. इधर परीक्षाएं चल रही थी, उधर विद्यार्थी का पड़ोसियों की चिट्ठी पत्री लिखने का काम जारी था।
एक दिन उनकी माता ने कहा, पढ़ाई का भी कुछ ध्यान है या यूं ही बेकार में समय बर्बाद करते रहोगे। बच्चे ने विनम्र उत्तर दिया, माँ यदि पढ़ाई से दूसरों का कुछ हित न हुआ तो ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या लाभ।
यह उत्तर देने वाला छात्र ही आगे चलकर महात्मा हंसराज के नाम से प्रख्यात हुआ। 10. गेरुआ वस्त्र पहने स्वामी विवेकानंद की ओर इशारा करके एक अमेरिकन स्त्री ने एक अमेरिकन से कहा, जरा इन महोदय की पोशाक तो देखो।
विवेकानंद ने अंग्रेजी में कहा, देवी आपके देश में सभ्यता के उत्पादक दर्जी और सज्जनता की कसौटी कपड़े माने जाते हैं, पर मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ के लोगों के पहचान सरलता और चारित्रिक उत्कृष्टता से की जाती है। 12. हर दिन को एक नया जन्म समझें और उसका सदुपयोग करें।
प्रश्न। 1. जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है?
2. जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है?
3. जीवन को क्या माना जाना चाहिए? विवेकशीलता का तकाजा क्या है? 4. किस जीवन को सार्थक माना जा सकेगा?
5. आध्यात्मिक प्रगति के कौन कौन से पक्ष हैं?
6. दिनचर्या बनाने व डायरी लिखने की आवश्यकता क्यों है?
7. वृद्धि सिद्धियों एवं सफलताएं पाने का रहस्य क्या है? 8. प्रगति का सोपान क्या है? 9. स्वयं को सुधारने में किस किस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए? 10. जीवन की सार्थकता कैसे अनुभव की जा सकती है?
कथाएं। 1. आलिवार क्रामदेव की वीरता में मुग्ध होकर एक चित्रकार ने उसका सुंदर तैलचित्र बनाया।
चित्र देखकर क्रामवेल बड़ा प्रसन्न हुआ पर बोला, अभी इसमें थोड़ी कमी रह गई। क्रामवेल के मुंह पर एक मस्सा था
जिसके कारण उसका मुंह असुंदर लगता था।
इसी कारण चित्रकार ने उस पर मसा नहीं काढ़ा था। पर जब क्रामवेल ने ही कमी बताई तो उसने कहा, सच है, जो अपनी बुराइयों को देखने का अभ्यासी है वही सच्चा वीर हो सकता है। यह कहकर उसने चित्र में मस्सा भी काढ़ दिया।
क्रामवेल बड़ा प्रसन्न हुआ और चित्रकार को बहुत सा पुरस्कार देकर विदा किया। 2. नौशिखा ने एक वृद्ध से पूछा, आपकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष, वृद्ध ने उत्तर दिया।
नौशिखा ने समझा बूढ़े को मजाक सूझ रही है, सो उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, बाल पक गए, शरीर हिल रहा है और अपने को 5 वर्ष का बता रहे हैं।
वृद्ध ने कहा, महाराज, पिछली जिंदगी तो मैंने यूं ही बेसमझी में बिता दी, पिछले 5 वर्ष से ही जीवन में नियमित आई है, इसलिए मैं 5 वर्ष का ही तो हुआ। नौशिखा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और उस दिन से युक्तिपूर्वक जीवन जीने लगा। 3. गरुड़ ने हंस से पूछा, बंधु, राजा परीक्षित ने एक बार भागवत सुनी और स्वर्ग चले गए, पर आज तो लोग 1000 बार भागवत सुनकर भी नरक में पड़े हैं।
हंस ने हंसकर कहा, भाई गरुड़, परीक्षित ने कथा सुनी ही नहीं थी, मन में बिठाए आत्मा में उतार भी ली थी, इसलिए वे मुक्त हो गए, पर आज तो लोग मनोरंजन के लिए कथा सुनते हैं, आत्मा कल्याण की इच्छा से नहीं।
4. अब्राहम लिंकन ने एक बार उनके जन्मदिन पर एक पत्रकार ने पूछा, आप साधारण मनुष्य से राष्ट्रपति बने, इस सफलता का रहस्य क्या है? लिंकन बोले, मैं अपने जीवन की पग पग पर परीक्षा की हर असफलता से कुछ सीखा, संभला और नए नाश्ते बनाता चला गया। 570 वर्ष की आयु का आदमी अपनी अवस्था के औसत 24 वर्ष सोने, 11 वर्ष नौकरी करने उद्योग करने, 8 वर्ष खेल कूद मनोरंजन, 6 वर्ष खाने, 6 वर्ष भ्रमण, 6 वर्ष 3 वर्ष शिक्षा, 3 वर्ष बातचीत और कुल 6 महीने ईश्वरीय प्रयोजन व आत्म कल्याण में लगाता है। इसी से समझा जा सकता है कि आज लोग कितना बेसमझदारी का जीवन जी रहे हैं। 6. एक मनुष्य ने अरस्तु से पूछा, सबसे मूर्ख मनुष्य कौन है? अरस्तु ने कहा, जो पिछले अनुभवों के आधार पर अपना जीवन नहीं सुधारता। 13. स्वाध्याय दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। प्रश्न 1. सिद्ध कीजिए कि मनुष्य संवेदनशील प्राणी है।
2. मनुष्य में विचारों एवं आकांक्षाओं का सृजन कैसे होता है?
3. मानवीय विकास की आधारभूत आवश्यकता क्या है?
4. प्राचीन काल में छात्रों को ऋषिकुल में क्यों भेजा जाता था?
5. व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किन किन तत्वों पर निर्भर है?
6. स्वाध्याय क्यों आवश्यक है?
7. प्रेरक साहित्य के अध्ययन से क्या लाभ है? 8. स्वाध्याय के लिए कैसा साहित्य होना चाहिए? 9. युग निर्माण योजना के साहित्य पर प्रकाश डालें। 10. स्वाध्याय को नित्य कर्म क्यों मानना चाहिए? कथाएं।
1. एक बच्चे को देश का बड़ा भारी नेता बनने की इच्छा थी, पर कैसे बना जाए यह बात समझ में नहीं आती थी।
एक दिन फ्रैंकलिन की जीवनी पढ़ते समय उसने ज्ञानार्जन की महत्ता पढ़ी। बच्चा उस दिन से स्वाध्याय में एक मन जुट गया और अपने मस्तिष्क में ज्ञान का भांडागार भर लिया। यही लड़का एक दिन अर्जेंटीना का राष्ट्रपति बना। नाम था डोमिंगो फास्टिनो सारामेंटो। 2. बालजक एक वकील के क्लर्क थे। एक दिन उन्होंने एक मित्र से थोड़े पैसे उधार मांगे तो मित्र ने इनकार कर दिया। बालजक को बड़ा दुख हुआ।
सोचने लगे, मेरी आर्थिक स्थिति खराब क्यों है? निसंदेह मेरे पास ज्ञान का अभाव है। यह सोचते ही वे पढ़ने में लग गए और एक मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में नाम भी कमाया और नामा भी। 3. भारतीयों का ज्ञान कमजोर होता है। जब सरदार वल्लभ पटेल को अंग्रेजी की इस आलोचना का पता चला तो उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी।
प्रातःकाल नहा धोकर इन टेम्पल लाइब्रेरी निकल जाते और लगातार 17 घंटे तक स्वाध्याय कर घर लौटते। परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए तो अंग्रेज दंग रह गए। 4. स्वामी रामतीर्थ रास्ते में एक पुस्तक पढ़ते जा रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति ने टोका, महाराज, यह कोई पाठशाला थोड़े ही है, कम से कम चलते समय तो पुस्तक रख दिया करें। तो स्वामी जी बोले, बंधु, यह सारा संसार ही मेरी पाठशाला है, बताइए इसमें कहाँ पुस्तक रखूं, कहाँ पाऊं?
5. क्लंग क्लंग घाटी पर 100 अंग्रेजों का मुकाबला आजाद हिंद सेना के कुल 3 जवान कर रहे थे। खबर आई, क्या सैनिक पीछे हटा लिए जाएं? सुभाष बोस को समझ में नहीं आया क्या किया जाए। जब भी कोई ऐसा अवसर आता वे पुस्तकों की शरण जाते।
विवेकानंद की पुस्तक खोली, पढ़ने लगे। एक स्थान पर लिखा था, सिर पर संकटों के बादल मंडरा रहे हों तब भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, बस सुभाष को परामर्श मिल गया। उन्होंने तीनों सैनिकों को आदेश दिया, डटे रहो। अंग्रेजों की टुकड़ी ने समझा यहाँ आजाद हिंद सेना का भारी जमाव है, अतएव ने चौकी छोड़कर भाग गए। सिक्स संत इमरसन से उनके एक मित्र ने पूछा, आपको अभी स्वर्ग जाने को कहा जाए तो आप क्या तैयारी करेंगे? सबसे पहले अपनी सारी पुस्तकें बांध लेंगे, इमरसन बोले।